और कथा कहती है कि देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, देव दुंदुभियां बजने लगी, क्योंकि उस परम मांगलिक सौंदर्य राशि का जो स्वयं मंगल भवन है और निभृत निकुंज विलासी हैं, वो युगल स्वरूप मूर्तिमान होकर हमको सुख देने, हम जैसे तुच्छ शुद्र जीवों को, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु सुधा निधि में घोषणा करते हैं, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढुं क्षमते न शुकादी नाम तो यद ध्यानगम, जो शुकदेव आदि जैसे परम भागवतों को भी सहसा लक्षित नहीं होते। ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तप किए कि श्री किशोरी जी की पदनक छटा का दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और उन श्री किशोरी जी की, उन प्राणधन जीवन सर्वस्व श्री कुंज बिहारी की युगल आभा लिए हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल का प्राकट्य हुआ। चहुं ओर आनंद छा गया, बयार शीतल हो गई, वृंदावन कुसुमित सुफलित पल्लवित हो गया, लेकिन स्वामी जी उदास हो गए। सब शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का मुख मलिन हो गया, उदास हो गया, ऐसा क्यों? तो एक शिष्य ने साहस करके कहा, प्रभु ये तो परम हर्ष का, परम मंगल का समय है कि आपके प्राण धन जीवन सर्वस्व जिन्हें आप भावना में ही लाड़ लड़ाया करते थे, वो आज मूर्त होकर आपके गोद में है और आप उदास क्यों हैं? स्वामी जी ने कहा, भैया देखो मैं तो विरक्त हूं, मुझे तो कभी एक मुट्ठी चना कभी वो भी मना, अरे मैं तो एक लंगोटी पहन के गुजारा कर लेता हूं, लेकिन इनको तो भाई रोज नई पोशाक चाहिए, आज मुकुट चाहिए, आज वंशी चाहिए, आज लकुट चाहिए, और आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, क्या खिलाऊंगा, क्या पहनाऊंगा, मैं इसी चिंता से चिंतित हूं। श्री बिहारी जी ने कहा, आप चिंतित नहीं होइए, आपको मेरे श्री चरण के नीचे से रोज 12 सोने की मोहरें प्राप्त हुआ करेंगी और आप उनसे नित्य सेवा करिएगा। तो श्री बिहारी जी के आदेशानुसार श्री स्वामी जी को नित्य बिहारी जी की गद्दी के नीचे से 12 सोने की मोहरें प्राप्त होने लगी। लेकिन स्वामी जी 24 कैरेट के सेवक थे ना, 12 मोहरें प्राप्त होती थी तो 12 के 12 नित्य खर्च करते थे। हमारी तरह नहीं कि आज ठाकुर जी ने थोड़ा सा रुपया दिया तो इसको बैंक में डाल दो, कल काम आएगा। अरे कागज के टुकड़े काम आएंगे, ठाकुर काम नहीं आएगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना, देखना, देखने की हिम्मत करना कि जीवन में अगर कभी काम आएंगे तो यही आएंगे। एक व्यक्ति मरण शैया पे पड़ा है, देश विदेश से आए डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, और वो लाखों रुपया शारीरिक ताप शारीरिक त्रास भुगतने के बाद डॉक्टर आकर मुंह लटका कर कह देते हैं, आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सके। अगर रुपया काम आए तो आप बच जाइए, बचा लीजिए। जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं ऐसी आती हैं, जीवन में कितनी घड़ियां ऐसी आती हैं जब धन कुछ नहीं कर सकता, मान कुछ नहीं कर सकता, सम्मान कुछ नहीं कर सकता, आपकी मान्यता कुछ नहीं कर सकती, आपका पद आपका वैभव आपकी गरिमा कुछ नहीं कर सकती। बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूं, तथा कथित बड़े लोगों से, जो लोग समझते हैं जाने कितने आनंद में जीते होंगे और बेचारे दीन हैं, हीन हैं। एक हमारे परिचित, उनका काफी बड़ा स्पिनिंग मिल है हमारे वहां, तो हमारे पास नियमित आते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं। तो उन्होंने एक बार एक नई गाड़ी ली, बहुत लंबी बहुत बढ़िया गाड़ी उन्होंने ली, और मुझे कहा कि आप सबसे पहले मेरे साथ वृंदावन चलिए, मैं इसके बाद तभी इसे चलाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम चलेंगे। हम लोग गाड़ी में वृंदावन गए, तो ही वॉज ए क्वाइट बिग बिजनेस मैन, बिजनेस टाइकून, तो चलते चलते फ़ोन पे फ़ोन, और शायद जून का महीना था, गाड़ी मर्सिडीज थी, बहुत बढ़िया, अंदर एसी चल रहा था। तो जब हम यहाँ दिल्ली रास्ते में उतरे, तो बाहर जब वो निकला व्यक्ति, तो उसने कहा, परेशान कर दिया सबने मुझे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया बाहर के लोग तो क्या सोचते होंगे ना कि ये व्यक्ति कितना सुखी है, हाँ देखो इतनी कड़कती गर्मी में कैसी बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, सच बताओ, हृदय पे हाथ रख के बोलना कि गाड़ी तुमको थोड़ी देर के लिए भी सुखी करती है। वो लोग मारवाड़ी सेठ थे, बोले महाराज जब टोटा होवे तो तेल भरान का भी जी दुख है, इसमें सुखी क्या करती है। विश्वास रखो, मान लो इस बात को, आप देखना जीवन से कितना बोझ कम हो जाएगा, जीवन से कितना दबाव कम हो जाएगा कि धन मान सम्मान आपको सुखी नहीं कर सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं, क्षणार्ध के लिए भी नहीं, नहीं कर सकता। और सुखी होना सभी चाहते हैं, कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा विरोधाभास है। वेरी स्ट्रेंज पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, सब सुखी होना चाहते हैं और एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्ग ठीक नहीं है, मार्ग ही रास्ता ही उल्टा है। घूम जाइए, जहां खड़े हो वहीं से घूम जाओ। संत कहते हैं गई सो गई तो राख रही को, जो गई उसको छोड़ो अभी यहीं से। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान अगर है तो वो अभी है और यहीं है, और अगर नहीं है तो वो कभी नहीं है और कहीं नहीं है, और यदि है तो वो अभी है यहीं है, और जो जहां जिस स्थिति में है वो वहीं से उसकी प्राप्ति कर सकता है। और हर कोई योग्य है, प्रेम का बीज तो सबके हृदय में है। कौन सा भगवान घटघट में रहता है? राम कृष्ण शिव नारायण, कौन सा भगवान? अल्लाह गॉड, कौन से वाला भगवान जो घटघट में है वो भगवान कौन सा है? बड़े रहस्य की बात गोस्वामी जी खोलते हैं, हित अनहित पशु पंछी हूं जाना। हित प्रेम रूप जो भगवान है वो घटघट में है। आपने सुना होगा ना, लव इज गॉड। और कोई तो ये कहता है कि प्रेम से भगवान को पाना, मैं ये कहता हूं कि आप प्रेम करो भगवान आपके पास आएंगे, आप प्यार करना सीख जाओ प्रभु आपके पीछे आएंगे। कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। मन निर्मल भया, आप प्रेम करिए मन निर्मल हो जाएगा, ठाकुर तो आपके पीछे पीछे आएगा, वो प्रेम का ही तो भूखा है, और क्या चाहिए उसे। भक्त आते किस लिए, भक्तों को वो भेजता किस लिए। श्री स्वामी हरिदास जी जैसे जो लाड़ लड़ा के गए और आज तक बिहारी जी को लाड़ लड़ा के हम सुख पा रहे हैं, ऐसे भक्त आते किस लिए हैं? हमको, संसार को, जगत को, जगत पति को सुख देने के लिए, सबको सुखी करने के लिए। और भैया कुछ लोग कहते हैं ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ऐसा सब खर्च होता है, अब जाप कर लो ध्यान कर लो। ये तो भैया गुरु नानक देव जी गुरबाणी में कहते हैं कि मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा और जित तू आप करावे, जिससे ठाकुर सेवा कराए उसी को सेवा का सुख मिलता है, सबके नसीब की बात थोड़ी ही है। अब मेरे बारे में आप बाहर जाके कुछ भी कह लीजिए, अच्छा कह लीजिए बुरा कह लीजिए, मेरे गुण गा लीजिए मुझे गाली दे लीजिए, आपका अधिकार है। मेरी फोटो खींच लीजिए, अपने घर लगा लीजिए, पूजा कर लीजिए, जूता मार लीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन मेरे चरण तो वही दबाएगा ना जिससे मैं दबवाना चाहूंगा। आप भजन करिए, कीर्तन गाइए, कुछ भी करिए, ठाकुर सेवा वही करेगा जिससे ये कराना चाहेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। और सेवा का रहस्य, जगत में तो जो सेवा करता है उसको श्रम होता है और जो करवाता है उसको सुख होता है, और ठाकुर की सेवा के विषय में ऐसा नहीं है। ठाकुर की सेवा में तो, ठाकुर की सेवा जब हम करते हैं तो हमको सुख होता है, उनको श्रम होता है। अरे माखन से कोमल श्रीअंग है उनका, हम जिन हाथों से मल तक साफ करते हैं वो हाथ प्रभु को छूने योग्य हैं क्या? केवल रंच प्रेम देखकर वो बिक जाते हैं और अपने आप को आपके हाथ में दे देते हैं। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में श्री ठाकुर सेवा करते होंगे। स्मरण रखिए, श्री ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो जाने के बाद मन में किसी और चीज की इच्छा करना महापाप है, और इसकी भगवान नाम जपने से भी शुद्धि नहीं होती। प्रभु की सेवा मिलने के बाद प्रभु से कुछ चाहना ये पाप है। आप एक बात सोचो, आपके घर जो व्यक्ति काम करने आता है, जो आपका कार्य करता है, बदले में आप उसे धन देते हैं, उसे कभी कोई परेशानी हो या वो कभी बीमार हो, आपके चित्त में उसके कहे बगैर सहज दया हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, कल काम पर मत आना। अरे हम तो दया के बिंदु हैं, वो तो दया के सिंधु हैं। बाबा गुरुवाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो बिन बोले सब जानते हैं। आप उनको मौका दो ना, आप उन्हें मौका ही नहीं देते। आप उनसे क्या मांग लोगे, कितना आपकी बुद्धि कितना सोच सकती है, बहुत थोड़ा। अरे वो जाने क्या देने की सोचे बैठे हो आपको, आप उनको मौका दो। चुप रहना सीख जाओ बस। वो दिन याद करो जब आप चुपचाप बस जाते हो, ठाकुर की सेवा करते हो, श्रृंगार करने के बाद बस चुपचाप थोड़ी देर उनका रूप निहारते हो और आंखों में दो प्रेम के आंसू भर के लौट आते हो, कितने दिन ऐसे होते हैं? बहुत थोड़े निकलेंगे, क्षमा करना। और श्री डोंगरे बापा कहते थे कि जिस दिन सेवा करके नयन सजल हो जाएं, जिस दिन सेवा करके कंठ भर आए, आप चाहो भी तो प्रभु से कुछ ना बोल सको, आप कुछ कहना चाहो तो भी ना कह सको, आप चाहो तो भी आपकी आंखों का जल आपको ठीक ठीक उनका दर्शन ना करने दे, उस दिन समझना सच में सेवा हुई, उस दिन समझना सच में आज मेरी सेवा ने ठाकुर को सुख दिया है। आपने बहुत सुंदर पोशाक बनाई ठाकुर की, उसको पहनाई, अरे वो तो पता नहीं उसको सुख दे रही है या नहीं, उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपकी आंखों को कितना सुख होता है। हमारे यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से बहुत अनुपम सुंदर दर्शन है प्रिया लाल का, और जब हम श्रृंगार करके हटते हैं और दर्शन का सुख पाते हैं और सब लोग जो दर्शन करते हैं, तो कितने लोगों की आत्मा सुखी होती है उससे। प्रभु को तो जाने हमारी सेवा सुखी कर रही है या नहीं, उनको तो जाने कष्ट होता है क्या होता है, लेकिन हम लोग कितने सुखी होते हैं उनका दर्शन पाके। सच मानिए थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हैं। तो श्री हरिदास ठाकुर को 12 मोहरे नित्य प्राप्त होने लगी श्री बिहारी जी के चरणों से, और श्री हरिदास स्वामी जी 56 भोग नित्य बनाते, रोज 56 भोग लगाकर, और भक्तमालकार कहते कि सुघड़ सेवा में सावधान, बड़ी सावधानी से सेवा श्री ठाकुर जी की, बिहारी जी की, स्वामी जी नित्य प्रति करते। लेकिन 56 भोग ठाकुर जी को लगाकर स्वयं क्या पाते हैं, 3 तोला चना। तो बिहारी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि आप मुझे तो इतना उत्तम भोग लगाते हैं और आप स्वयं 3 तोला सूखा चना पाते हैं, मुझसे आपकी दशा देखी नहीं जाती। तो स्वामी जी ने कहा कि प्रभु 56 भोग तो आप जैसी सरकार को ही शोभा देता है, मेरे जैसे विरक्त को तो ये चना ही बहुत है। स्वामी जी की दीनता देखकर, स्वामी जी का दैन्य देखकर श्री बिहारी जी की आंखें भराई, और कथा कहती है कि श्री बिहारी जी ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से निवेदन किया कि अच्छा आप भोग मत पाइए, लेकिन हमारी आज्ञा मानकर, हमारी विनय मानकर, ये प्रेम का प्रताप कि समस्त त्रिभुवन जिनके आगे करबद्ध रहता है, वो एक भक्त को हाथ जोड़ कर कह रहे कि आप थोड़ा प्रसाद पा लिया करिए। और कहते हैं कि उस दिन से स्वामी जी आटे की भिक्षा मंगा के और अंगारों पर सेक कर उसकी बाटी बनाकर पाने लगे। और 56 भोग के 3 हिस्से स्वामी जी करते थे, पहले वृंदावन के संतों महंतों को पवाकर, फिर एक ढेर में तो पशु जैसे बंदर आदि पाते थे, एक में पंछी पाते थे, और एक ढेर जो था वो जमुना जी में मछलियों कछुओं आदि के लिए डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार खूब लाड से खूब चाल से श्री बिहारी जी की सेवा स्वामी जी कर रहे थे। सखी भाव भावित होकर रसिकों को सुख प्रदान कर रहे थे। एक बार स्वामी जी का शरणागत कोई रसिक घूमते घूमते लाहौर पहुंचा, तो लाहौर में एक विज्ञानी नाम के एक भक्त रहते थे, बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत दान पुण्य आदि करते थे, तो संतों की सेवा करते थे, संत सेवी थे। तो वो संत घूमते घूमते लाहौर में उन विज्ञानी जी के यहाँ पहुँचे, और पहुँचे तो काम बोले, महाराज कहाँ से पधारे? बोले वृंदावन से आया हूँ। तो बोले चलो आपके वहाँ की कुछ बात सुनाओ। तो उन संत ने बिहारी जी के रूप की बात बताई, बिहारी जी के लावण्य की बात बताई, स्वामी जी की सेवा की बात बताई, और जैसे ही स्वामी जी के विषय में विज्ञानी जी ने सुना तो उनका मन तुरंत छटपटाने लगा कि बस मैं अभी पहुंचूं वृंदावन और श्री स्वामी जी का दर्शन कर लूं। तो विज्ञानी जी ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि स्वामी जी को क्या पसंद है, मैं क्या लेके जाऊं उनके ठाकुर जी से, मैं मिलने जाऊं तो क्या लेकर जाऊं? तो उन संत ने कहा कि देखो, या तो बिहारी जी उत्तम से उत्तम राग सुन के प्रसन्न होते हैं, या आप कोई बहुत सुंदर सा इत्र बनवाइए और वो ले जाइए, वो उनको बहुत पसंद है। तो संपन्न पुरुष थे, 1,00,000 रुपया उस समय पे 1,00,000 रुपया खर्च करके बहुत उत्तम से उत्तम इत्र उन विज्ञानी जी ने तैयार कराया और लेकर वृंदावन धाम पहुंच गए। निधिवन गए, स्वामी जी वहां नहीं थे, किसी ने कहा कहां? तो बोले वो जमुना तट गए हैं। सेवक ने कहा आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, अभी आएंगे तो आप दर्शन पाइएगा। तो उन विज्ञानी जी ने कहा कि नहीं, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं वहीं जाऊंगा। साधक का लक्षण, आज करे सो अब। और हम, गर्मी लग रही है, लाइट अभी होनी चाहिए, अभी एसी चालू चाहिए, भूख लग रही है, अभी खाना चाहिए, ठंड लग रही है, अभी रजाई चाहिए, और भजन वो बाद में करेंगे, वो कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ठाकुर जी की सेवा हाँ अभी कर लेंगे, हाय तो संडे है, आज तो ठाकुर जी भी आराम करेंगे, तुम करोगे? तो उनसे रुका नहीं गया, वो जमुना तट जाके पहुंचे, और उस समय श्री जमुना जी के किनारे बैठे स्वामी जी अपनी मानसिक भावना में प्रियालाल को होली की लीला खिला रहे थे। और उस लीला के चिंतन में क्या चल रहा था कि श्री जी तो पिचकारी भर रही थी, और जिस पात्र में से वो पिचकारी भर रही थी उसमें जल पूरा नहीं था, और लाल जी पिचकारी भर के खड़े थे, वो चलाने ही वाले थे, और प्रिया जी को ये चिंता हो गई कि अगर इन्होंने पिचकारी मुझ पर पहले चला दी तो मैं तो खेल हार जाऊंगी। और श्री स्वामी जी ललिता सखी के रूप में प्रिया जी की तरफ के थे, अब वो तो श्री जी के पक्ष के थे, उनको भी चिंता हो गई कि आज तो हम बाजी हार गए, जो कभी नहीं हुआ वो आज हो जाएगा, इनको कोई जीतने थोड़ी देता है, हम हमारे सामने ये कितना भी टेढ़े मेढ़े होके खड़े हो जाएं, कितना भी दुनिया को मन रिझा लें, कितना भी दुनिया को अपने जाल में फंसा लें, पर रसखान कहते हैं दौर दौर जब हार थक्यो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन, और देखो छिप्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। शेष महेश वेद आगम निगम जिसका पार नहीं पाते, संकेत मात्र नहीं कर पाते, अरे वो सेवा कुंज में देखो, यहाँ कुंज भवन में बैठा राधा रानी के चरण दबा रहा है। तो स्वामी जी को भी चिंता हुई और प्रिया जी चिंतित हुई कि ना तो आज इसमें जल है, और स्वामी जी इस लीला में मग्न ही थे, इतने में उन विज्ञानी जी ने आके स्वामी जी को प्रणाम किया और वो इत्र का पात्र स्वामी जी के हाथ में दे दिया। स्वामी जी ने कहा आज तो बात बन गई, और पिचकारी में जल था नहीं, स्वामी जी ने पीछे से जाके और ठाकुर जी पे वो इत्र का पात्र उड़ेल दिया, और श्री जी की जीत हो गई लीला में। और उधर विज्ञानी जी को ये रहस्य कहां से समझ में आने वाला था, तो स्वामी जी का दर्शन पाकर तो वो बड़े आनंदित हुए, रोम रोम खिल गया, लेकिन जब कहा कि अरे 1 लाख रुपया खर्च करके तो मैंने ये इत्र बनवायो और इन्होंने ये सारा जमुना जी की रेत में डाल दियो, ये तो बड़े अजीब बाबा जी निकले। अब जब स्वामी जी ने मन की बात जानी, स्वामी जी ने कहा कि आपने बिहारी जी का दर्शन किया? बोले महाराज मैं तो सीधा आपके दर्शनों को लालायित यहाँ चला आया। स्वामी जी ने कहा, बोले अच्छा हमसे बाद में बात करना, जाओ पहले बिहारी जी का दर्शन कर आओ। सेवक को कहा जाओ इनको श्री निधिवन में श्री बिहारी जी का दर्शन करा लाओ। और सेवक ने जब श्री निधिवन का पट खोला, बिहारी जी का पट खोला, तो उन विज्ञानी जी समेत समस्त निधिवन समस्त वृंदावन उस इत्र की महक से सुरभित हो रहा था। और विज्ञानी जी क्या देखते हैं कि बिहारी जी उस इत्र में नख से लेकर शिख तक सरोवर खड़े हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब विज्ञानी जी ने समझ लिया कि साधारण पुरुष नहीं है, यहां भक्त और भगवान में भेद नहीं है। और देखा कि उस इत्र की महक से पूरा वृंदावन महक रहा है, निधिवन महक रहा है, लता पता आनंदित हो रही हैं, सुरभित हो रही हैं। इसी तरीके से एक बार बुंदेला के राजा मधुकर शाह स्वामी जी के बड़े भक्त थे और राजा राम ओरछा के, तो नियमित स्वामी जी के श्री दर्शन पाने को आया करते थे। एक बार आए तो निधिवन में 56 भोग लग रहा था बिहारी जी को, तो स्वामी जी ने कहा आप जाइए 56 भोग का दर्शन कराइए। तो दर्शन करने गए तो राजा क्या देखते हैं कि ब्रज रज के बने बर्तनों में सारा 56 भोग रखा है। तो 56 भोग का दर्शन करके तो उनको आनंद हुआ, लेकिन एक शंका से मन में आ गई और स्वामी जी से आके राजा क्या निवेदन करने लगा कि क्षमा करिए पर मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर की सेवा में तो धातु का पात्र होना चाहिए, यदि आप आज्ञा करें तो मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए सोने के पात्र भिजवा दूं। बिहारी जी ने कृपा करी राजा पर, संशय उत्पन्न हुआ और स्वामी जी से निवेदन कर दिया। स्वामी जी कहते हैं कि देखो ये देव मुनि दुर्लभ पिय प्यारे की मन भावन वृंदावन की रज है, साधारण रज नहीं है। स्वर्ण पात्र इसके सामने क्या तुलना कर सकते हैं, इसके सामने क्या महत्व रखते हैं। तो राजा को समझ तो आई लेकिन मन से संशय अच्छी तरह निकला नहीं, कांटा रह गया मन में। तो बिहारी जी ने कहा कि इन पर पूरी कृपा होनी चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा एक बार जाओ फिर से दर्शन करके आओ। सेवक से कहा जाओ इन्हें दर्शन करा लाओ। सेवक समझ गया कि राजा पर स्वामी जी की पूर्ण कृपा हो गई है, स्वामी जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करके भेजा। और राजा क्या देखते हैं कि कोटि कोटि सूर्य की रश्मियों को भी पराजित कर देने वाले स्वर्ण पात्रों में वो 56 भोग रखा है। और राजा आकर चरणों में पड़ गया, बोले महाराज मेरे जैसे करोड़ों राजा भी बिक जाएं तो ऐसा एक पात्र नहीं तैयार करा सकते, मुझे नहीं पता था कि आपकी सेवा में ऐसे पात्र रखे हैं। इसलिए हरिदासन सो गर्व न करिए, उनके एक क्षण के भजन पर, उनके एक क्षण के भजन के सुख पर ठाकुर ऐसे करोड़ों त्रिभुवन वार के फेंक सकता है। भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान उन्होंने युग युग में नीचा किया है, भक्त का मान युग युग में ऊंचा किया, ये उनका बिरद है, उनका स्वभाव है। भक्तमालकार कहते हैं गान कला गंधर्व, कि गान की कला में गंधर्व जिनके अंश मात्र कला मात्र थे। और श्री स्वामी जी वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं, श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी, श्री श्रीनाथ जी महाराज, ये सब राग और भोग के ठाकुर हैं, राग से और भोग से इनको रिझाया जाता है। और श्री स्वामी जी महाराज ने तो राग रागिनी मूर्तिवंत होकर उनकी सेवा करती थी, और स्वामी जी ने तो राग गाकर ही बिहारी जी को प्रकट किया था। तो राग और भोग के ठाकुर हैं। और एक बार श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त श्री माधव दास जी वृंदावन श्री बिहारी जी का दर्शन करने को आए। दर्शन करने आए तो बिहारी जी को राजभोग लग रहा था, तो द्वारपाल ने कहा, महाराज भोग लग रहे हो, आप नेक इंतजार कर लीजिए, पट खुलेंगे, आप दर्शन करिएगा और प्रसाद पाइएगा। तो माधवदास जी जगन्नाथ जी से चलते आ रहे थे तो बड़ी भूख लगी थी, तो उनकी पोटली में थोड़ा सा चना बंधा था। जमुना जी के किनारे जाके उन्होंने मन में ठाकुर जी को भोग लगाया और वो चना पाने लगे। अब वृंदावन के ठाकुर तो बिहारी जी हैं, तो चना पाने लगे। उधर स्वामी जी ने आके जब भोग उसारा, पट खोला, तो देखा कि आज तो बिहारी जी ने भोग ही नहीं आरोगा है। बोले, जय जय, आज मुझसे कुछ गलती हो गई, अपराध हो गए हो, आज आपने भोग ही नहीं आरोगे हो। तो बिहारी जी बोले, अरे क्या बताएं, वो जो माधव दास आए हो ना जगन्नाथ से, वहां ने मुझे चना पवा दियो, और वो चना कछु करड़े है ज्यादा, तो देखो एक तो खा के मेरी जवान में छाले हो रहे हैं और एक पेट में दर्द हो रहा है, कैसे आरोगू भोग। तो स्वामी जी ने पीड़ा जानकर कथा कहती है, कितना माधुर्य है, कितना रस। अब कोई तो कहे कि तीनों लोकों का ठाकुर, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा और मुट्ठी भर चना पाके उनकी जिह्वा छिलाई है, पेट में पीड़ा हो रही है, स्वामी जी ने आंवले की चटनी खिलाकर और गुड़ के पानी के कुल्ले कराए, पहले पेट दर्द ठीक किया, जबान के छाले ठीक किए और फिर बिहारी जी को भोग पवाया। इतना मधुर है ये वृंदावन का ठाकुर, इतना लाडला। तुम भोग रख दोगे थाल आगे, वो खाएंगे भी नहीं, उनको तो सखियों के हाथ से खाने की आदत है ना। एक एक कौर में सखियां 100-100 मनुहार करती हैं, 100-100 बार निहोरा करती हैं, तब जाकर वो पाते हैं। ये उनका लाड है, सखियों का सुख है। और हमारे जैसे तो थाल लगाया और ठाकुर जी के आगे गए, एक घंटी बजाई और ले आए, लग गए हो भोग। फिर कहते हो, मेरे से आकर पूछते हैं, सच में खाते हैं क्या ठाकुर जी? अरे तुम मौका ही कहां देते हो खाने का। अब तुम किसी के यहाँ खाने पे जाओ, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, वो तुम्हारे आगे थाली रखे, घंटी बजाए और उठा ले, तुम्हारी फोटो खींचने जैसी शक्ल हो जाएगी। बताओ, तुम मौका ही कहां देते हो उनको खाने का। और धर भी दोगे भोग अगर उनके सामने, तो मन में ये होता है, खाना तो हमें ही है, थाल आएगा तो हमारे ही पास, क्यों? हमारे संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं होता, हम लोग एकादशी नहीं करते। तो एक ने कहा, क्या आचार विचार ही नहीं है यहां, तो कुछ एकादशी नहीं करते। अरे कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। पद्म पुराण में जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया तो समस्त देवताओं के सन्मुख एकादशी दोनों हाथ उठाकर कहती है कि मेरा व्रत करके जो भगवत प्रसाद का निरादर करता है, कोटि जन्म नरक में पड़ता है। समझना, मैं एकादशी के दिन अन्न भक्षण के लिए नहीं कह रहा हूं। शास्त्र एक आज्ञा देता है, चार अपराध ऐसे हैं जिनकी भगवान नाम जपने से भी शुद्धि नहीं होती, शांति नहीं होती। कौन से? भगवान के चरणामृत को साधारण जल मानना, अपने गुरु को मनुष्य मानना, तुलसी को वृक्ष मानना और भगवान के प्रसाद को साधारण अन्न मानना, ये चार अपराध ऐसे हैं जिनकी भगवान नाम जपने से भी शुद्धि नहीं होती। अब एक बात बताओ, एकादशी बड़ी है या ठाकुर जी बड़े हैं? बोलो, ठाकुर जी बड़े हैं ना। अब एकादशी, चलो हम तो एकादशी करें, ठाकुर जी क्यों एकादशी करेंगे? हमारे यहाँ तो मुझे याद ही तब आता है आज एकादशी, जिस दिन ठाकुर जी कहते हैं आज तो हम खीर खाएंगे, मुझे लगता है आज एकादशी होगी, जब ही कह रहे हैं। कईयों ने तो हमारे यहाँ आना ही बंद कर दिया एकादशी के दिन, दर्शन करने ही नहीं आते, बोले महाराज तो अब धक्के से प्रसाद पवा देंगे। अरे मैं प्रसाद खिला रहा हूं, आपने ठाकुर जी को खीर भोग लगाई, पूरी भोग लगाई, हलवा भोग लगाया, जो कुछ भोग लगाया, भोग लगने के बाद वो ना खीर है ना पूरी है ना हलवा है, वो प्रसाद है, वो भगवत प्रसाद है। भगवत प्रसाद भगवत तुल्य होता है, अन्न नहीं होता। और यदि, और कुछ तो ऐसे महारथी हैं जो एकादशी के दिन भोग ही फलाहार का लगाते हैं, क्यों? क्योंकि पता है थाल खाना तो हम नहीं है, वही लगाएं जो हमको खाना है। आप कहीं से भी देख लीजिए, भगवत प्रसाद की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, और यदि कोई करता है तो करोड़ों जन्म का पुण्य उसका क्षीण होता है। और आज यहाँ से इस व्यासपीठ से जितने लोग यहाँ इस परिधि में खड़े हो, उसके बाद एकादशी के दिन कभी भगवत प्रसाद की अवहेलना मत करना। अगर कभी कोई दे दे और तुमको डर लगे तो उसी समय ठाकुर जी का नाम लेना, मुझे याद करना, तुम्हारे सारे पाप मेरे, मेरे सारे पुण्य तुम्हारे, और निश्चिंत होकर भगवत प्रसाद पाना। मुझे डर नहीं लगता। अरे जिनका नाम लेने से तीनों लोकों के पापी, एक नाम लेने से। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिनवाही तर। एक क्षण में, एक क्षणार्ध में जिनका एक नाम लेने से तीनों लोकों के पापियों का पाप नाश होता है, जो पवित्र हैं, परमानंद हैं। पाप तो बड़ी शुद्र सी चीज है, क्या है? अरे उस तक पुण्य नहीं पहुंचता। कोई अपने पुण्य के बल से वहां तक नहीं पहुंचता तो पाप वहां तक क्या जाएगा? सूर्य से आप ये पूछो कि आपने कभी अंधेरे को देखा है, वो कहेगा नहीं। एक बार अंधेरे ने जाकर शिकायत की भगवान से कि ये जब भी आता है मेरे सामने मुझे मार देता है, मुझे भी तो आपने ही बनाया है। तो ठाकुर जी ने सूर्य से कहा, क्यों क्यों इसके सामने आते ही तू इसको मार देता है? तो सूर्य ने कहा, प्रभु मैंने तो देखा है, मुझे पता ही नहीं अंधेरा क्या होता है। उनको मालूम ही नहीं है पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यश क्या है, अपयश क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, राजा क्या है, रंक क्या है। उनको एक प्रीत की सच्चाई से काम है बस। 100 की 1000 की 1,00,000 की एक बात, आज के बाद कभी भी व्रत करके भगवत प्रसाद का निरादर नहीं करना। हाँ मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कोई शनिदेव के मंदिर में भोग लगाया और तुम भी वो भी प्रसाद समझ के पालो। सिर्फ ठाकुर के प्रसाद की गारंटी मैं लेता हूं और किसी की नहीं। कल हम शाम को चर्चा कर रहे थे, किसी ने कहा कि आजकल शनिदेव के ग्रह बहुत अच्छे हुए हुए हैं, क्योंकि कोई कितना ही बड़ा 30 मार खां क्यों नहीं हो, शनिदेव से सबको डर लगता है। अरे छोड़ो, हरि भजो सीधे सीधे बस। सकई तो सब परपंच तज और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे बस। हम एक बार कहीं जा रहे थे, मुझे ठाकुर जी की तरफ से ऐसी आज्ञा है कि आप अपने पास कभी पैसा नहीं रखना, तो इसलिए मेरे कपड़ों में जेब भी नहीं होती, कभी गलती से भी नहीं रख लूँ मैं। तो एक बार हम जा रहे थे, एक व्यक्ति बहुत पीछे पीछे आया कि महाराज कुछ दे दो दे दो दे दो। मेरे साथ कोई था, मैंने कहा चल भैया इसे दे दे। वो जेब से निकालने लगा और बोले दे दो महाराज, शनिदेव आपका भला करेंगे। मैंने कहा वापस रख ले। बोले क्यों? मैंने कहा भैया हमें शनिदेव से भला कराना ही ना है, हमारा जो करेगा यही कर देगा बस, हमें और का उसे कराना ही ना है भला। मांगो, मैं नहीं कहता मत मांगो, लेकिन लो तो भी इनसे लो, लेना है तो भी प्रभु आपसे लेना है, आपके हाथ से लेना है और कहीं से नहीं। मैं नहीं कहता एकदम से आप निष्काम हो जाओ, चाहे सकामता से जुड़ो, लेकिन जुड़ो प्रभु से, जुड़ो ठाकुर जी से। सकाम से कहो, कैसे भी कहो, भाव से कहो, स्वभाव से कहो, कहो श्री कृष्ण, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मनुष्य का तन, भारतवर्ष में जन्म, साधु संग, सत्संग, घर में संस्कार, ये सब पाके भी बिहारी जी के नैना से नैना नहीं लड़ाए तो उसने क्या देखा? कुछ भी नहीं, उसने कुछ नहीं देखा।